नमस्कार सुतो, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती और पराक्रम दिवस आज पूरा देश मना रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक व अग्रणी सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती आज है। देश की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अन्य देशों के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। वे एक ऐसे दूरदृष्टि व स्वाधीनता के लिए देश के नौजवानों को जहां तक कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसी राष्ट्र के लिए स्वाधीनता सर्वोपरि है और इस महान मूल मंत्र को नवयुवकों की नसों में प्रवाहित करने, तरुणों की सोई आत्मा को जगाकर देशव्यापी आंदोलन और युवा वर्ग को सौर शक्ति के माध्यम से स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर जी गायकवाड़ सर जुड़े हुए। गायकवाड़ सर, मोबाइल अड्डे पे स्वागत सर आप।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जिसे भारत सरकार ने घोषित किया है उसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस रहता है, जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संज्ञा देकर हम सब भारतीयों को एक गौरव प्रदान करने का प्रयास किया है।
सर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है, सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर इस दिवस पर?
देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी हम सब युवाओं के लिए, खास करके उन्हीं युवाओं के लिए जो देश के प्रति अच्छी भावना रखती, क्योंकि उनका जो कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और उनके जो वक्तव्य जब सुनते हम तो हमको हमारे अंदर एक अपने राष्ट्र के प्रति मतलब भावना का संचार होता है कि देखिए, वो आईसीएस की एग्जाम, हालांकि उनके पापा जी चाहते थे कि आईसीएस की एग्जाम दे, लेकिन क्योंकि उनके जो पिता थे वो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के भक्त थे, लेकिन आईसीएस मतलब सुभाष चंद्र बोस जी जो कि उनकी 14 संतानों में सबसे छोटी संतान थी, तो मतलब इनके इतिहास को जानो, इनके इतिहास को समझो, तो उन्होंने देखिए भारत जो ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था तो उसको कैसे मुक्ति दिला सकते हैं, और उन्होंने अपनी खुद के आईसीएस की नौकरी छोड़ के और रामदास जो राम प्रसाद जो थे मतलब पश्चिम बंगाल के खुदीराम मतलब जैसे यार मतलब मेरे नाम याद नहीं आ पा रहा उनका मतलब उनके साथ जुड़ के उनके साथ पत्र व्यवहार के माध्यम से जुड़े रहे वो और पत्र व्यवहार से जब जुड़े तो वो उनके कहने पे सी आर दास थे वो है ना,
तो चित्रंजन दास
जी। हाँ, चित्रंजन दास वही सी आर दास
जी।
तो उनके साथ उनका पत्र व्यवहार होता था जब वो विदेश में अपनी शिक्षा के लिए गए थे, तो उनके साथ पत्र व्यवहार होता था और चित्रंजन दास के कहने पे ही उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। हालांकि उनके गांधी जी के साथ मतभेद थे, लेकिन जब वो यहाँ से जाके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते थे और वहां का सहयोग लेके जिस तरीके से भारत को आजादी दिलाने के लिए, और जब उन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया, उस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने विदेशों में, और भारत के प्रति उनकी निष्ठा दिखती है इसमें कि वास्तव में आज जो राजनीतिक नेतृत्व इतने सारे आंदोलन कर रहे हैं, इतने सारे अभियान चला रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को जाने और सही में आंदोलन करना, राजनीतिक नेतृत्व एक अपने दिखावे के लिए आंदोलन कर रहे, वो अपनी उनकी रोटियां सेकना चाहते राजनीतिक नेतृत्व, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी के इतिहास को जानो, उनके कर्तृत्व को जानो, तो लगता है कि वास्तव में देश की आजादी, देश के प्रति सच्ची भावना और देश के प्रति सच्ची निष्ठा, देश के लोगों के हित की बात कहीं दिखना है, समझना है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को जानना चाहिए, और आज का दिवस हमको वो सब जानने के लिए प्रेरित करता है।
जी सर। सर, क्या नेताजी ने देश के बाहर भी रहकर देश की स्वाधीनता के लिए निरंतर प्रयास किए और करते रहे? सर, युवा किस तरीके से उनके गुणों को, उनके योगदान को किस तरीके से जाने, और क्या उनके जो डॉक्यूमेंट्री है या पढ़ने के संसाधन है बहुत कम है, उसके बाद भी युवा किस तरीके से नेताजी को जान सकते हैं, उनके कार्यों के योगदान को पढ़ सकते हैं? सर
देखिए, हम लोग मतलब एक इतिहास का अवलोकन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इतिहास में उन लोगों को उभारा गया है, एक नियोजित तरीके से प्रयास के द्वारा उभारा गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी के असीम अप्रतिम योगदान को कहीं ना कहीं मतलब नकारने की कोशिश की गई है, जबकि उनका जो योगदान है बहुत है। अभी देखिए उनके लिए उनकी मृत्यु हुई कि नहीं हुई भारत सरकार को खुद नहीं पता, ये बड़ी विडंबना है। और जब उनको भारत रत्न देने की बात आई थी तो उनके परिवार ने मना कर दिया कि भाई आपको खुद को पता नहीं, मतलब उनके राज्य ने 64 फाइलें उपलब्ध कराई थी उनके मृत्यु की जांच के लिए, आयोग बैठाया गया था बनर्जी आयोग। बनर्जी आयोग की सिफारिशें कहाँ है, उसका क्या हुआ? अब आप बताइए, इतिहास यदि इस तरीके से मतलब भारत सरकार उनके या जो भी सरकार रही है एक आजादी के बाद, उनके योगदान को कहीं ना कहीं नकारा गया। हम कुछ किताबों के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से उनको जान रहे, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता इतनी जबरदस्त है कि आज भी भारत का कोई भी युवा अंतर मन से, क्योंकि सम्मान जब अंतर मन से होता, आज के नेत्र राजनीतिक नेतृत्व को लोग उतना सम्मान नहीं देते, लेकिन उनके प्रति जब सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की जब बात आती है, तो सही में उनके अंदर एक ऊर्जावान, बस हमारी युवा वर्गों को एक सही दिशा देने की जरूरत है। अभी देखिए शिक्षण संस्थाओं में कैरियर मेले का आयोजन हुआ, तो मुझे भी वहां पे करीबन 8 स्कूलों में बुलाया गया था। मैं सभी स्कूलों में अपना समय निकाल के दौड़ भाग के कि नहीं मेरे युवाओं को मुझे जगाना है, तो जिंदगी में क्या देके जाता हूँ इस दुनिया को। तो मुझे लगा कि मुझे, हालांकि उस दिन दिक्कत गई, मैं 8 जगह पे जाके बच्चों के बीच में आधा आधा एक एक घंटा का समय देके उनको ये बताया कि हम खुद को समय देके सही दिशा में बढ़ के एक सही राजनीतिक कैरियर, राजनीति को भी अपना कैरियर बना सकते, लेकिन वो उस तरह का कैरियर मत बनाइए। आप कैरियर वैसा बनाइए जैसे भगत सिंह ने अपने देश के लिए कैरियर बनाया, अपने देश को कैरियर बनाया, अपने देश की आजादी को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना एक चुनाव किया। चंद्रशेखर आजाद देखिए, उन्होंने कहा था कि मैं सदैव आजाद रहा हूँ। जब उनको इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गोली उन्होंने स्वयं को मारी, तो उन्होंने कहा कि आजाद को आप पकड़ नहीं सकते। ये जो जज्बा है ना साहब, ये भारत के युवाओं को, जो 65 करोड़ युवाओं का देश है, आप खुद सोचिए 35 साल के नीचे के 37 करोड़ युवा है, जिनको आज डर है, वो यार चीन हमसे डरता है कि भारत जो ना युवाओं का देश। अभी देखिए पिछली सरकार में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, हमारे देश के युवाओं के द्वारा किया। युवा हमारी बहुत बड़ी संसाधन शक्ति है, बस उसको एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन, गलत लोगों को डिमोन्स्ट्रेट नहीं करना है। हमारे समाज में हम लोग गलत लोगों को डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नशा मुक्ति अभियान हमको चलाना है तो हम अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाते, खुद दारू पी के तहसील ऑफिस में पड़ा रहता। आप सोचिए साहब क्या दे रहे हैं इस समाज को हम लोग। तो ये सब बातें नकारात्मक बातें, पर मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा इतना सक्षम है, हमारा नेतृत्व इतना जबरदस्त है कि कोरोना काल में देखिए हमारे भारत के युवा वैज्ञानिकों ने 10 माह में दवाई देकर संपूर्ण विश्व व्यवस्था को एक संदेश दिया, और आज भारत विश्व गुरु बनने की जो कल्पना कर रहा है, 155 देशों को जो दवाई वितरित की, उसमें कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के वो ताकत छुपी हुई। इसलिए हमारा युवा आज भी पूरे विश्व में, आज अमेरिका देखिए, रूस देखिए, हमको मानता है, हमारे टैलेंट को मानता है साहब। ये प्रेरणा मिलती है हमको सुभाष चंद्र बोस जी से।
जी सर, ऐसी क्या सुभाष चंद्र बोस जी के सामने प्रश्न चिन्ह आ गए कि उन्होंने ICS की नौकरी छोड़कर देश सेवा और स्वाधीनता स्वतंत्रता के लिए वे देश वापस आकर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना संघर्ष निरंतर जारी रखा?
देखिए उसमें जो सीआर दास, चित्रंजन दास साहब, उनके साथ जो पत्र व्यवहार होता था, जो बाहर पढ़ रहे थे, तो वो मान के चले कि वो उनके गुरु बन गए एक प्रकार। चित्रंजन, उन्होंने देश की आजादी का जो मतलब रखा कि हमें अपने लिए नहीं जीना है, हमारी देश की इस धरती माँ के लिए जीना, भारत माँ के लिए जीना, ये जो बातें उनके पत्र व्यवहार के माध्यम से उनको सीखने को मिलती थी उस देश के प्रति। उन्होंने जब उनका ICS में जब परीक्षा के लिए चयन हुआ था, तो वहाँ के अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने कहा अपने भारतीय सेना के बारे में आप ये ऐसा ऐसा कहो, तो उन्होंने कहा ये नहीं कह सकता, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। हालांकि वो मानसिक रूप से इतने सतर्क थे, एक घटना मुझे याद है कि जब उनका इंटरव्यू था तो एक उनको रिंग दिया गया अंगूठी और कहा कि इसमें से सुभाष चंद्र बोस को गुजार के दिखाओ, आप कैसे गुजरेंगे। तो उन्होंने कागज लिया, उसमें लिखा सुभाष चंद्र बोस और उसमें से उसका पिंडल बना के डाल दिया। बोले ये वो, ये देखिए उनका इंटेलिजेंस क्या थी, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के थे। मतलब उनकी जो माता थी, ग्रह स्वामिनी थी, वो उनकी जो माता थी, उनकी माता देश के आजादी के प्रति जो भाव रखती थी, वो उनके मतलब उनके घर से उनके माँ के द्वारा उनको उस तरह की शिक्षा प्रदान की, और वो शिक्षा कहीं ना कहीं जब असली स्वरूप में बाहर आई तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जब उन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का कमान संभाली, जिसको मतलब वहां गठन किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों को मिला के, और उन्होंने जब कमान संभाली, और आप देखेंगे कि जो भारत की जो पहली महिला जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ी थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, वहां झांसी की रानी रेजिमेंट का उनको प्रमुख बनाया गया था। बाद में लगे तो ये सब चीजों के लिए इनके ऊपर दिल्ली के किले में दिल्ली का जो लाल किला वहाँ मुकदमा दायर भी हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस की जो क्षमता थी, उन्होंने जिस तरह से विदेशों में अपनी साख बनाई, जर्मनी देखिए, हिटलर उनके साथ था, हिटलर उनको खुद नेताजी कहता था, अमेरिका का सहयोग मिला। तो अलग बात है कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी शासन व्यवस्था हार गए, हमको आजादी मिली, पर अलग तरह भारत को आजाद करने की जो मतलब बात थी, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने वक्तव्य और उनके भाषण के माध्यम से, उनके कर्तृत्व शैली, उनकी कर्मशीलता से जो भारत के लोगों के बीच में जो भावना जगाई, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान को उजागर करने की जरूरत है, केवल कुछ लोगों को सामने ला के जिनका कोई योगदान नहीं उनको आप हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब इतिहास को गलत तरीके से युवाओं के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास हो रहा है।
सर, क्या नेताजी द्वारा जो देश की स्वाधीनता का अर्थ उन्होंने बतलाया था कि केवल राष्ट्र राष्ट्र बंधु से मुक्ति नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, जाति, सामाजिक और अविचार के निराकरण, सांप्रदायिक संकीर्णता का त्याग कर इस मूल मंत्र के माध्यम से देश की स्वतंत्रता चाहते थे? सर, एक समाज को उनके किसी मूल्यों को बांधकर समाज की जो उनकी अवधारणा थी वो किस तरीके की थी?
नहीं, उनकी अवधारणा बहुत विस्तृत थी, क्योंकि गांधी के साथ हरिपुरा अधिवेशन में जब उनका मतभेद हुआ और उन्होंने 1939 में जब फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, तो उसका उनका उद्देश्य दिखता है कि वो एक ऐसे समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे, विकासमूलक समाज का निर्माण चाहते, शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, और शिक्षा के साथ साथ जो संसारी शिक्षा है, नैतिक शिक्षा है, उसके ऊपर बल देते, तो उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। और उन्होंने जब गांधी से अलग होकर विचार, देश को गांधी भी चाहते थे आजाद कराना, सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे, वो कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन उनका जो आजाद करने का जो तरीका था वो इन सब लोगों से भिन्न था। ये थोड़े से क्रांतिकारी विचारों के लोग थे, और हमारे देश में एक किसी व्यक्ति विशेष को आजादी का सूत्रधार बना दिया था, जिसकी संपूर्ण आजादी आप उठा के देखिए, कई लोगों ने गोलियां खाई। अभी मैं कल पाताल कोट गया था, तो केवल हम लोग आजादी की लड़ाई केवल अपनी स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के पहले, आप शिवाजी की सेना को देखिए, पूरे मावठा लोगों को उन्होंने इकट्ठा करके मुगलों से आजादी दिलाई। तो हमारी जो क्रमबद्ध इतिहास की श्रृंखला को पढ़ेंगे तो उसमें शिवाजी महाराज का भी योगदान। मैं कल जब पाताल कोट गया तो वहाँ हमारे वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने बताया ये सारी चीजें की ऐसा इनका महत्व, हम उन लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना। तो आजादी सुभाष चंद्र बोस जी की आधारशिला शिवाजी के माध्यम से, वो विचार उस तरह से आए, क्योंकि शिवाजी महाराज ने जिस तरीके से हमारे राष्ट्र की कल्पना को साकार किया है, हिंद स्वराज के साथ, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने भारत को आजादी दिलाने के लिए प्रयास किया। उनके विचार बहुत ही अच्छे थे, उनकी शिक्षा पद्धति भी अच्छी थी, मतलब बच्चों के बीच में कैसे शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, समाज कैसे बन सकता है, तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के बाद उनका वो स्वरूप उभर कर आया है। जी
सर, मेरा अंतिम सवाल है, संक्षेप में चाहूंगा सर, कि नेताजी के जो विचार थे वो विश्वव्यापी थे, वे समग्र मानव जाति के किस तरीके से विकसित बनाना चाहते थे?
देखिए, हमारे यहाँ जो भी विद्वत पुरोधा जन्म लिया है, उन सब का, चाहे वो धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हो, चाहे महाराष्ट्र में जितने संत महात्मा हुए हैं, चाहे भगत सिंह जो थे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद जी, ये समग्र मानव कल्याण की बात कर, इन्होंने समग्र मानव कल्याण पर अधिक जोर दिया, शिक्षा पे जोर दिया, और इन सब माध्यमों से वो विश्व व्यवस्था में भारत की शांति को बढ़ाना चाहते थे, भारत के जनमानस को जगाना चाहते थे, जो जिसने 250 साल गुलामी की मानसिकता को झेला था, वो उनका बड़ा स्वरूप था, जिससे वो देश को आजादी दिला के राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए।
जी सर, तो ये थे मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जयंती और पराक्रम दिवस पर पूरा देश मना रहा है इस विषय पर अपनी राय दी। मधुकर सर, मोबाइल वाले को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।